ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
नमस्कार, मेरा नाम है जीत शुभंती। आपके सामने प्रस्तुत है महाराणा प्रताप के गाथा की ऑडियो बुक। भूमिका। महाराणा उदय सिंह संवत 1536 से 1540 में चित्तौड़ मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। उन्हीं दिनों अकबर ने बहुत बड़ा धावा किया, परंतु वह हार कर लौट आया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद मेवाड़ में आपस की फूट देखकर अकबर को अवसर मिला तो उसने चित्तौड़ पर फिर धावा किया। इस बार उदय सिंह अपनी जान बचाकर भागे, परंतु राजपूत सरदारों ने अपने प्राण रहते चित्तौड़ शत्रुओं को नहीं दिया। भयानक युद्ध हुआ। जयमल और पुत्ता ने बहुत वीरता से लड़ाई की। अंत में मेवाड़ की राजलक्ष्मी भाग्यवान अकबर के हाथ में आ गई। इस लड़ाई में 30,000 राजपूत वीर मारे गए और बहुत सारी स्त्रियां भी लड़कर मारी गईं। शेष जो बच गई थी उन्होंने जौहर किया, अर्थात आग में जलकर अपनी पवित्रता को बचाया। अंततः अकबर ने चित्तौड़ दखल किया। उदय सिंह भागकर पीपली राज्य के जंगलों में कोहिल जाति की सहायता में रहने लगे। वहां से वे अरावली की घाटी में आए, जहां बापा रावल भी रह रहे थे। उन्होंने पहले उस स्थान पर अपने राज तत्व काल में एक झील बनवाई थी, जिसका नाम उदय सागर है। अब उन्होंने एक छोटा सा महल बनवाया, फिर उसके आसपास और भी इमारतें बन गईं, और वह एक छोटा सा नगर हो गया। उसका नाम उदयपुर रखा गया, जो कि मेवाड़ राजवंश की राजधानी थी। चित्तौड़ चले जाने के 4 वर्ष बाद 42 वर्ष की उम्र में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनके 25 पुत्र थे। मरते समय उदय सिंह ने छोटे पुत्र को कुल की प्रथा के प्रतिकूल अपना उत्तराधिकारी बनाया। जगमल गद्दी पर बैठ गया, परंतु यह बात मेवाड़ के सरदारों को बहुत बुरी लगी और उन लोगों ने शीघ्र ही उसे उतारकर महाराणा प्रताप सिंह को गद्दी पर बैठाया। प्रताप सिंह का जन्म जेठ सुदी 13 संवत 1566 को हुआ था और मीति फागुन सुदी 15 संवत 1617 को गांव गोघुंदे में वे गद्दी पर बैठे थे। प्रताप सिंह राज्य के अधिकारी तो हुए, परंतु ना तो उनके पास कुछ विशेष राजसी ठाट था और ना ही कोई मजबूत किला ही था। प्रताप सिंह वीर पुरुष थे। उनका हृदय उत्साह से भरा हुआ था। उनके अंदर चित्तौड़ मुसलमानों से छीनकर अपने कुल का गौरव पुनः स्थापित करने की आग सुलग रही थी। हालांकि सरदार लोग लड़ाई में हारते हारते टूट गए थे और उनका मन भी कमजोर हो गया था, परंतु प्रताप सिंह की दृढ़ता, वीरता और उच्च अभिलाषा को देखकर फिर सभी को साहस हुआ। फिर सब कमर कसकर खड़े हो गए। प्रताप सिंह ने इसकी जरा सी भी परवाह नहीं की कि अकबर जैसे बादशाह से लड़ने के लिए कोई साजो सामान ठीक नहीं है, परंतु उनका हृदय स्वाधीनता का फल चखने के उमंग से भरा हुआ था। उन्होंने यह सोचकर कि जैसे हमारे पूर्वजों ने इस चित्तौड़ की रक्षा की है और अपने शत्रुओं को इस किले में कैद किया था, क्या हम वैसा ना कर सकेंगे? उन्होंने अकबर की सेना और साजो सामान को तुच्छ समझा। जिस समय प्रताप सिंह अकबर से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, उस समय अकबर ऐसे उपायों में लगा हुआ था जिनको सुनकर प्रताप सिंह बहुत दुखी हो गए। वह उनके जाति भाइयों तथा संबंधियों को अपनी ओर मिला रहा था। मारवाड़, बीकानेर, आमेर, जो कि पहले प्रताप के साथ थे, अकबर के पक्ष में चले गए। यहां तक कि प्रताप सिंह का सगा छोटा भाई शक्त सिंह सगर जी भी उनको छोड़कर बादशाह से जाकर मिल गया और इसके बदले में उसे उसके पूर्वजों की राजधानी चित्तौड़ का किला दिया गया और राणा की पदवी से भूषित भी किया गया। जैसे जैसे उनके विरुद्ध साजो सामान बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे प्रताप का उत्साह और साहस भी बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपनी माता के दूध की कसम खाई कि जैसे भी होगा अपनी मातृभूमि का उद्धार करेंगे। अकेले निसहाय प्रताप सिंह ऐसे प्रतापी शत्रु के साथ 15 वर्ष तक बहुत बहादुरी से लड़ते रहे और अंत में एक प्रकार सफल भी हुए। महाराज मान सिंह गुजरात विजय करके लौटते हुए उदयपुर के रास्ते से लौटे। प्रताप सिंह ने उनका बहुत अतिथि सत्कार किया, परंतु वे उनके साथ खाने में शामिल नहीं हुए। इसी कारण लड़ाई आरंभ हुई। मान सिंह के दिल्ली आने पर बादशाह ने राणा पर गुस्सा होकर मान सिंह के साथ चैत्र सुदी 5 संवत 1633 को 5,000 सेना भेजी। इस सेना के साथ आसिफ खां, मीर बख्शी, गाजी खां, सैयद अहमद, सैयद हाशिम, राय लूनकरण आदि सरदार भी थे। टाट साहब ने लिखा है कि इस लड़ाई में शहजादा सलीम भी आए थे, परंतु यह भ्रम है क्योंकि शहजादा सलीम उस समय केवल 7 वर्ष के थे। यह लड़ाई हल्दी घाटी की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। ग्वालियर के राजा राम सिंह का इकलौता बेटा इस लड़ाई में मारा गया, परंतु इससे राजा राम सिंह दुखी ना होकर और ज्यादा उत्साह से लड़े तथा मारे गए और ग्वालियर के राज सिंहासन को अनाज छोड़ गए। राणा ने अपने घोड़े चेतक को मान सिंह के हाथी पर कुदाकर बर्छी मारी, परंतु वह वार खाली गया। हौदे को तोड़कर बर्छी महावत को लगी और महावत मारा गया। फिर बादशाही फौज इन पर टूट पड़ी और लगा कि राणा मारे जाते, परंतु स्वामी भक्त झाला मान सिंह राणा के छत्र और झंडे को लेकर एक ओर भागे। मुसलमानों ने समझा कि राणा उधर ही भाग रहे हैं, सब उसी ओर दौड़ पड़े और इधर अवसर पाकर राणा निकल गए, जिसके उपरांत झाला मान सिंह अपने सारे साथियों के साथ वहीं मारे गए और ऐसी ही वीरता के साथ उन्होंने अपने स्वामी के प्राण बचाए। राणा ने इसके बदले में झाला मान सिंह राणा के वंशधरों को अपने दाहिने ओर स्थान दिया और आज्ञा दी कि ये लोग महल तक नगाड़ा बजाते अपने छत्र और झंडे के साथ आया करें। भागते हुए राणा को पहचान कर 2 मुगलों ने उनका पीछा किया, परंतु एक बरसाती नदी बीच में आ गई और राणा का घोड़ा चेतक बहुत घायल होने पर भी अपने स्वामी को लेकर नदी फांद गया। इधर इस असहाय अवस्था में राणा को देखकर उनके भाई शक्त सिंह जी का भी भ्रात प्रेम उमड़ आया और वे पुरानी दुश्मनी को भुलाकर उनके पीछे दौड़े। और जिस समय दोनों मुगल नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, तब उसने उनको ललकारा और दोनों को लड़कर मार गिराया। इस तरह राणा दूसरी बार मारे जाने से बच गए। परंतु जैसे ही राणा चेतक के ऊपर से उतरे, वह गिरकर मर गया। राणा ने उसके मरने पर बड़ा शोक किया और उस स्थान पर एक चबूतरा बनवाया। वे प्रायः स्वयं वहां जाया करते थे। टाट साहब के लेख के अनुसार यह लड़ाई मीति सावन बदी 7 संवत 1633 को हुई थी और इसमें राणा के 500 मनुष्य तथा तोमर अर्थात तुंवर राजा राम सिंह ग्वालियर वाले के 350 मनुष्य मारे गए। अकबर नामे में लिखा है कि बादशाही फौज उखड़ चुकी थी और लग रहा था कि वह लोग भाग खड़े होने वाले हैं, परंतु मेहतर खां ने चालाकी की। वह चंदौल की फौज को दौड़ाते हुए आया और यह बात फैला दी कि बादशाह आ पहुंचे। बस फिर क्या, सभी का साहस बढ़ गया और राणा की सेना हताश होकर लौट पड़ी। इस लड़ाई के बाद महाराणा ने कुंभल मेर के किले में अपनी गद्दी जमाई, जो उदयपुर से पश्चिम की तरफ पहाड़ों में परगने गोड़वाड़ के ऊपर है। उन्होंने सारा मैदानी इलाका, जिसको मेवाड़ कहते हैं, उजाड़ दिया और वहां के आदमियों को पहाड़ों में बुलाकर अजमेर, मालवे और गुजरात के रास्तों पर लूट मार शुरू कर दी, जिससे अनाज और दूसरी व्यापार की चीजों का आना जाना बंद हो गया और बादशाही लश्कर को बहुत मुश्किल होने लगी। आसिफ खां और मान सिंह से कुछ बंदोबस्त ना हो सका और इसकी शिकायत बादशाह के कानों तक पहुंची। मगर बादशाह का दिल उस वक्त बंगाल की तरफ लगा हुआ था, क्योंकि वहां उनकी फौज पठानों से लड़ रही थी और वे खुद उसकी मदद के लिए सावन बदी 2 को बंगाल की तरफ रवाना हो गए। हालांकि खुशनसीबी से गोगुंदे की जीत से 25वें दिन बंगाल जीत लिया गया और बादशाह ये खबर सुनकर रास्ते से राजधानी वापस लौट आए। वो वहां से दिखाने को तो जियारत, मगर असल में मेवाड़ के लश्कर को मदद पहुंचाने के लिए रवाना होकर आसोज सुदी 7 को अजमेर पहुंचे। वहां सुना कि गोगुंदे के लश्कर में रास्तों की तकलीफों की वजह से अनाज कम आया है और कुंवर मान सिंह ने राणा का मुल्क लूटने की मनाई कर रखी है। इस कारण गोघुंदे में बहुत तकलीफ है। इसके अलावा कुंवर और आसिफ खां में अनबन भी है। इस पर बादशाह ने लश्कर के अमीरों के नाम हाजिर होने का हुक्म भेजा। जब वे हाजिर हुए तो कुंवर और आसिफ खां की ड्योढ़ी कई दिन तक बंद रखी गई और फिर उनको माफ करके सामने बुलाया गया। इस अवसर में महाराणा ने सिरोही के राव सुल्तान देवड़ा, जालौर के खान ताज खां और ईडर के राजा नारायण दास को भी अपने में शामिल कर लिया और ये सब मिलकर अरावली पहाड़ों के दोनों तरफ गुजरात के रास्तों पर लूट मार और फसाद करने लगे। बादशाह ने जालौर और सिरोही के ऊपर तरसू खां और राय सिंह को भेजा और वे दोनों सरदार डर कर अजमेर में बादशाह के पास हाजिर हो गए। तब बादशाह ने तरसू खां को पाटन की हुकूमत करने भेजा और राय सिंह को नांदोत में रहने का हुक्म दिया, जिससे महाराणा का गुजरात में आने जाने का रास्ता बंद हो गया। अब बादशाह कार्तिक बदी 6 को अजमेर से गोघुंदे की तरफ चल दिया और फौज को तो 2 दिन पहले से ही बख्तर पाखर पहना दिए थे। गोघुंदे पहुंचकर कुतुबुद्दीन, राजा भगवंत दास और कुंवर मान सिंह को तो पहाड़ों में महाराणा के ऊपर और कुलीज खां इत्यादि को ईडर की तरफ भेजा। गोघुंदे पहुंचकर कुतुबुद्दीन, राजा भगवंत दास और कुंवर मान सिंह को तो पहाड़ों में महाराणा के ऊपर और कुलीज खां इत्यादि को ईडर की तरफ भेजा और इनके साथ ही हाजियों के काफिले यानी संघ को भी हलोदर की घाटी से गुजरात की तरफ रवाना किया और मेवाड़ के पहाड़ों में से होकर ईडर पहुंचा। महाराणा और नारायण दास एक तरफ हो गए, मगर ईडर कार्तिक बदी 13 को जीत गया। फिर बादशाह गाजी खां इत्यादि अमीरों को मोही में, जो गोघुंदे से 20 कोस है, और अब्दुल रहमान इत्यादि को मदारिये में छोड़कर पूस सदी 8 को बांसवाड़ा के रास्ते से मालवे की तरफ रवाना हुए। कुतुबुद्दीन खां और राजा भगवंत दास, जो हाजियों को गुजरात की सरहद तक पहुंचा चुके थे, बगैर हुक्म आकर शामिल हो गए, मगर उन पर नाराजगी हुई और कुछ दिन तक दरबार बंद रहा। बादशाह उदयपुर होकर बांसवाड़े को रवाना हुए। उदयपुर में शाह फखरुद्दीन और जगन्नाथ को उदयपुर के दर्रे यानी दहवाड़ी की घाटी में राजा भगवंत दास और सैयद अब्दुल्ला खां को छोड़कर लश्कर की अफसरी कुतुबुद्दीन खां की जगह आसिफ खां को दे गए और बांसवाड़े, जहां डूंगरपुर और बांसवाड़े के रावल प्रताप और आसकरण हाजिर हो गए थे, वहां से होकर देपालपुर में पहुंचे और वहां कुछ दिन रहे। बादशाह के गोघुंदे की तरफ आने और पहाड़ों में होकर मालवे की तरफ जाने का एक मतलब यह भी था कि किसी तरह महाराणा भी दूसरे रईसों के समान उनके पास हाजिर हो जाएं, तो यह यात्रा सफल हो जाए। मगर महाराणा तो ऐसी पट्टी पढ़े ही नहीं थे। उनको सब तरह से अपना नुकसान करना मंजूर था, लेकिन बादशाह के आगे सिर झुकाना हरगिज मंजूर नहीं था। बादशाह कम से कम 6 महीने के करीब महाराणा के मुल्क में और उसके आसपास रहे और उन्होंने महाराणा को तंग करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। फिर भी महाराणा ने कुछ परवाह नहीं की और उनको सलाम तक नहीं कहलाकर भेजा, बल्कि हर तरह से उनको परेशान करते रहे। उन्होंने बादशाही थानों पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया और मेवाड़ की तरफ से आगरा का और बादशाह के लश्कर का रास्ता बंद कर दिया। जैसा कि मुल्ला अब्दुल कादिर लिखता है कि मैं उस समय बीमारी के कारण वतन में रह गया था और बांसवाड़े से लश्कर जाना चाहता था, मगर हिंडौन में अब्दुल खान ने वहां रास्ता बंद और भयानक बताकर मुझे लौटा दिया। तब मैं ग्वालियर, सारंगपुर और उज्जैन के रास्ते से देपालपुर में जाकर बादशाह के पास हाजिर हुआ। इस बीच सुल्तान देवड़ा भी बादशाह के लश्कर से भागकर सिरोही में जा पहुंचा था और ईडर का राव नारायण दास भी फसाद करने लगा था। बादशाह ने ये खबरें सुनकर माघ सुदी 7 को राजा भगवंत दास, कुंवर मान सिंह, मिर्जा खां और कासिम खां आदि को गोघुंदे की तरफ भेजा और सुल्तान देवड़े के लिए राय सिंह को और नारायण दास के लिए आसिफ खां को लिखा कि राय सिंह ने तो सिरोही और आबूगढ़ सुल्तान से छीन लिया और आसिफ खां के ऊपर नारायण दास को महाराणा ने मदद देकर भेजा। वह ईडर से 10 कोस पर पहुंचकर बादशाही थाने ईडर पर छापा मारना चाहता था, परंतु आसिफ खान ने फागों सुदी 6 को 7 कोस आगे जाकर मुकाबला किया और लड़ाई में हरा कर भगा दिया। लेकिन राजा भगवंत दास और मिर्जा खां आदि महाराणा का कुछ बिगाड़ नहीं सके। वे उसी तरह थानों में दौड़ते रहे। बादशाही अमीर उनको पकड़ने की बहुत कोशिश करते थे मगर उन तक पहुंच भी नहीं पाते थे, और जब भी पहाड़ में महाराणा के ठहरने की खबर पाकर उन्हें घेरते थे तभी महाराणा दूसरे पहाड़ से निकलकर छापा मार देते थे। वे कभी एक जगह या किले में जमकर नहीं बैठते थे ताकि वे किसी भी वक्त मुश्किल में ना पड़ जाएं। वे हमेशा इधर उधर बादशाही अमीरों की देखभाल में घूमते रहते थे। इस दौड़ धूप का फल यह हुआ कि उदयपुर और गोघुंदे से बादशाही थाने उठ गए और मोही का थानेदार मुजाहिद बेग मारा गया। बादशाह का दोबारा अजमेर में आना। अकबर बादशाह कार्तिक बदी 12 को मामूल की तरह फिर अजमेर आए और अगली फौज से मेवाड़ में कुछ काम नहीं निकलता देखकर कार्तिक सुदी 15 को मेड़ते से फिर एक फौज महाराणा को जीतने के लिए भेजी। उसमें अफसर तो वही राजा भगवंत दास, कुंवर मान सिंह, पायदा खां, मुगल सैयद कासिम, सैयद हाशिम, सैयद राजू, असद तुर्कमान और गजरा चौहान आदि थे। लेकिन बख्शी आसिफ खां की जगह शहबाज खां ने ले ली थी और सारी फौज की जिम्मेदारी उसी को थी। यह बहुत चालाक अफसर था। उसने पहले तो हाजियों के काफिले को, जिसके साथ बहुत रुपया मक्का को भेजा गया था, महाराणा को सरहद से पार उतार दिया और फिर बादशाही थाने देखकर सरहद पार करने के लिए बादशाह से और मदद मांगी। बादशाह ने शेख इब्राहिम फतेहपुरी को कुछ फौज देकर भेजा। उसके पहुंचने पर शाहबाज खान ने महाराणा से कुंभलगढ़ ले लेने का इरादा करके राजा भगवंत दास और कुंवर मान सिंह को तो तरफदारी का वादा करके बादशाह के पास जाने की सीख दे दी और फिर शरीफ खां, गाजी खां और मिर्जा खां आदि के साथ जाकर उस किले को घेर लिया। वैशाख बदी 12 संवत 1635 को महाराणा ने अंदर से लड़ाई की मगर एक बड़ी तोप के फट जाने से किले का सामान जल गया। महाराणा लाचार होकर किला छोड़कर बांसवाड़े की तरफ निकल गए मगर उनके नामी राजपूतों ने पहले किले के दरवाजे पर लड़ाई की और फिर मंदिरों और घरों के आगे बहादुरी से मुकाबला करके मारे गए। शाहबाज खां गाजी खां को किले में छोड़कर महाराणा के पीछे चल दिया। फिर दूसरे दिन दोपहर को गोघुंदे में और आधी रात को उदयपुर में हमला किया और बहुत सारा माल लूटा। मूता नेड़सी ने लिखा है कि अकबर की फौज ने संवत 1633 में कुंभल मेड़ को जीत लिया। सोनगरा मान, अखेरा जीत और राणा जी के कई सेवक मारे गए। महाराणा को पकड़ने के लिए शाहबाज खां पहाड़ों में बहुत घूमा मगर महाराणा हाथ नहीं आए। आखिर उसने थक कर पीछा छोड़ दिया और पता लगाकर उनका डेरा लूट लिया। राय सुरजन हाड़ा का बेटा दूदा, जो बादशाह से बागी हो गया था और एक साल पहले बादशाही लश्कर से लड़कर महाराणा के पास चला आया था, वो शाहबाज खां के पास हाजिर हो गया। वह उसी को लेकर पंजाब में बादशाह के पास गया, जिसके बाद आषाढ़ सुदी 13 संवत 1635 को उसको पेश किया गया, जिसके बाद बादशाह ने उसकी प्रार्थना पर दूदा के कसूर माफ कर दिए। शाहबाज खां के जाने पर महाराणा बांसवाड़े की तरफ से 56 के पहाड़ों में आए और बादशाही थानों को खत्म करने लगे। बादशाह ने फिर बदी 14 संवत 1635 को शाहबाज खां और गाजी खां को भेजकर मोहम्मद हुसैन, शेख तैमूर बदखशी और मीर ज़ादा अली खां और भी बहुत से अमीरों को साथ भेजा। महाराणा फिर पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए। शाहबाज खां फिर 2-3 महीने तक मेवाड़ में घूमा और थानों में हर जगह कारगुजार आदमी रखकर चला गया और जेठ सुदी 14 संवत 1636 को बादशाह के पास पहुंचा, जिसके बाद महाराणा को फिर से अपने काम करने का मौका मिल गया। कार्तिक बदी 13 संवत 1636 को बादशाह खुद अजमेर में आए और जब सुदी 12 को वापस जाने लगे तब फिर शाहबाज खां को सूबे अजमेर का प्रबंध देखने के लिए छोड़ गए। इससे पता चलता है कि महाराणा ने मेवाड़ के अलावा और जगह भी सूबे अजमेर में दखलंदाजी की थी। शाहबाज खां ने फिर महाराणा का पीछा किया। इस बार वे बहुत मुश्किल में पड़ गए और उन्हें खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। वे जिधर भी जाते थे दुश्मन उनका पीछा करता हुआ चला आता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 5 बार खाना छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी परेशानी कभी किसी को नहीं हुई होगी कि दुश्मन हर समय तलवार लिए हुए सिर पर खड़ा मिले, और इस मुश्किल से निपटना भी महाराणा प्रताप सिंह का ही काम था, जो कि ऐसी ऐसी कड़ी परेशानी झेलते थे। बड़े लोगों ने जो यह बात कही है कि शूरवीर उसको कहना चाहिए जिसके तेवर हार में भी ना बदलें, यह महाराणा प्रताप सिंह में अच्छी तरह से देखा जा सकता था कि हार पर हार होती गई और जमीन चली गई, फिर भी वे लड़ने मरने ही पर तैयार रहते थे और कमजोर बात मुंह से कभी नहीं निकालते थे। टार राजस्थान में लिखा है कि एक बार उनकी बेटी अपने हिस्से की रोटी आधी तो खा गई थी और दूसरी बार के खाने के लिए रखी गई आधी रोटी एक बिल्ली खा गई, जिसके कारण वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। यह दुख महाराणा से नहीं सहा गया और उन्होंने अकबर को लिखा कि मेरी तकलीफ कम करो। अकबर इसमें बहुत घमंड में आ गया और उसने दरबार लगाकर यह पत्र सबको दिखाया। बीकानेर के राजा राय सिंह के भाई पृथ्वीराज ने कहा कि यह किसी ने राणा के नाम पर बट्टा लगाने के वास्ते जालसाजी की है। राणा को मैं जानता हूं, वह कभी ऐसे शब्द नहीं लिखेगा। और फिर पृथ्वीराज ने महाराणा को इस हरकत से रोकने के लिए बहुत चमत्कारी कविता लिखकर भेजी, जिन्हें सुनने से महाराणा को 10,000 घोड़े की ताकत आ गई। और ये कहानी झूठी लगती है, क्योंकि अकबर बादशाह के किसी इतिहास में भी ऐसा नहीं पाया जाता है कि महाराणा ने कभी कोई ऐसी दरख्वास्त बादशाह से की हो। अगर की होती तो अबुल फजल, जिसने जरा जरा सी बात को बना बना कर लिखा है, इसको राई का पहाड़ बनाकर लिखता। मगर अकबर नामे में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है, इसीलिए यह बात साफ साफ बनावटी लगती है। हाँ, यह सही है कि जब शाहबाज खां का पीछा करने से महाराणा के पांव उखड़ गए और उनको कहीं भी आसपास ठहरने के लिए जगह नहीं मिली, तो वे मुंधा के पहाड़ों में, जो आबू से 12 कोस पश्चिम में है, जहां पहले राणा मोकल सिंह जी भी विखे में रह चुके थे, वहां चले गए। वहां देवल राजपूतों की बस्ती है। उन्होंने महाराणा की बहुत आवभगत की और लायाणे ठाकुर राजधवल ने, जो सब देवलों में पाटवी थे, अपने पास कोई अच्छी चीज उनको तोहफे में देने लायक ना पाकर अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी और पहाड़ के ऊपर उनको बहुत खातिर और हिफाजत से रखा। महाराणा ने वहां बगीचा लगाया और बावड़ी बनवाई, जो अभी तक मौजूद है। मुंधा पहाड़ पर रहने से मेवाड़ में महाराणा का फिर कुछ पता शाहबाज खां को नहीं लगा और उसी समय बादशाह का हुक्म उसके नाम पूरब में जाने के लिए आया, जहां बिहार के अमीर बागी होकर फसाद कर रहे थे। शाहबाज खां मेवाड़ से रवाना होकर आषाढ़ सुदी 6 संवत 1637, मेवाड़ी संवत 1636 को फतेहपुर बादशाह के पास पहुंचा। महाराणा उसके जाने की बात सुनकर अपने मुल्क में आने के लिए राय धवल से चल दिए। उस समय राय धवल द्वारा की गई अतिथि सत्कार का इनाम देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने उसको राणा का खिताब देकर अपने बराबर बना दिया। बादशाह ने शाहबाज खां की जगह रुस्तम खां को अजमेर का सूबेदार बनाकर भेजा, मगर वह 4 महीने में ही कछवाहों के मुकाबले में मारा गया। फिर उसकी जगह मिर्जा खां सूबेदार बनकर आया, जो बाद में खान खाना कहलाया। मालूम होता है कि यह महाराणा का दोस्त था और महाराणा की तारीफ में इसके बनाए हुए दोहे बहुत मशहूर हैं। इसने महाराणा से छेड़छाड़ नहीं की, जिससे उनका कब्जा अपने मुल्क में फिर से हो गया और वे धीरे धीरे आगे भी बढ़ने लगे। मूता नेड़सी ने लिखा है कि बैसाख सुदी संवत 1638 से 1639 में महाराणा ने शेरपुरे के थाने को खत्म कर दिया। यहां मिर्जा खां की बेगम पकड़ी गई, मगर महाराणा ने बहुत इज्जत के साथ उसे बाद में मिर्जा खां के पास भेज दिया। राज प्रशस्ति में लिखा है कि कुंवर अमर सिंह मिर्जा खां के कबीलों को पकड़ लाया था, जबकि बादशाह उसको गोगुंधे छोड़ गए थे, मगर महाराणा ने फौरन उसको मिर्जा खां के पास पहुंचा दिया। भले ही यह काम कभी भी हुआ हो, परंतु यह काम बहुत भलाई का था जो महाराणा द्वारा अपने दुश्मनों के साथ हुआ, और शायद इसी एहसान के बदले में खान खाना ने वे दोहे महाराणा की तारीफ में बनाए हों। मिर्जा खां संवत 1637 के पौष तक अजमेर के सूबे में रहा, क्योंकि माघ सुदी 6 को जब बादशाह काबुल से फतेहपुर में आए थे तब अकबरनामे में उसका नाम दरबारियों में लिखा है और उस दिन बख्शियों ने बादशाह के हुक्म से उसको शाहबाज खां के ऊपर खड़ा किया था। इससे शाहबाज खां को बहुत बुरा लगा और वह बगावत करने को तैयार हो गया। बादशाह ने तब नाराज होकर उसको रायसाल दरबारी के पहरे में बिठा दिया। इससे पता चलता है कि मिर्जा खां महीने में या कुछ पहले अजमेर से चला गया था और फिर इस काम के लिए नहीं लौटा। मिर्जा खां के चले जाने से महाराणा को और भी आराम हो गया। वे फिर अपने राज्य पर कब्जा करने लगे। हर एक थाने पर लड़ाई शुरू हो गई और रास्ते बंद हो गए। फिर बादशाह तक इस बात की खबर पहुंची। बादशाह ने इस बार जगन्नाथ कछवाहे के नेतृत्व में फौज तैयार की, बख्शीगिरी मिर्जा जाफर बेग को दी। फागुन बदी 1 को ये लोग रवाना हुए। सैयद राजू ने मांडल को छोड़कर महाराणा पर तभी चढ़ाई कर दी, जिसके बाद महाराणा दूसरे घाटी से निकलकर मेवाड़ में आ गए और कई गांव लूट लिए। हालांकि सैयद राजू जब लड़ने को गया तब वे चित्तौड़ की तरफ मुड़ गए। उधर से जगन्नाथ भी आ गया, मगर राणा जी तो लड़ते हुए पहाड़ों में चले गए और कुछ समय बाद फिर लौट आए। यह फिर पीछे पहुंचा था। एक बार तो बहुत ही पास जा पहुंचा था, मगर महाराणा फिर भी हाथ नहीं आए। तब यह पता लगाकर उनके कबीलों के ऊपर चढ़ गए, जो एक विकट जगह पर झीलों की सुरक्षा में थे। मगर महाराणा को पता चल गया और वे उनको भी ले गए। ये फिर गुजरात की सीमा तक पीछे गए, मगर महाराणा का पता नहीं चला। तब डूंगरपुर के रावल से जुर्माना लेकर ये लौट आए। इसी तरह से जगन्नाथ भी 2 साल तक पहाड़ों में भटकता रहा। फिर बादशाह ने मजाहत बेग को इलाहाबाद भेज दिया और जगन्नाथ भी संवत 1642 में काश्मीर चला गया। महाराणा की फतह। इस समय से महाराणा के दिन फिरने लगे। बादशाह की फिर कोई फौज नहीं आई। अकबरनामे में 12 बरस यानी 1693 तक महाराणा का जिक्र नहीं आता है, सिर्फ उनके मरने की खबर लिखी है। इतने समय तक बादशाह के चुप रहने और फौज नहीं भेजने का कारण यह था कि वे संवत 1641 से पंजाब में रहते थे और उनका ज्यादातर ध्यान उत्तर और पश्चिम की तरफ था, क्योंकि तुरान के बादशाह अब्दुल खां उजबक से दुश्मनी हो गई थी और अक्सर उसके काबुल और हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की खबरें उड़ा करती थीं। टार्ड राजस्थान में लिखा है कि महाराणा के ऊपर आई तकलीफ देखकर उनके पुश्तैनी दीवान भीमा शाह का दिल भी जल गया और जो दौलत उसके बाप दादा द्वारा जोड़ी हुई चली आ रही थी वह सब उसने महाराणा को दे दी और महाराणा ने उस रुपए से घोड़े आदि खरीद कर और राजपूतों को सेना में भर्ती करके बादशाही सेना पर जो दबेर में पड़ी हुई थी वहां जा पड़े और उसको गाजर मूली की तरह से काट कर भागती हुई सेना का आमेर तक पीछा किया। उसी गर्मा गर्मी में कुंभल मेर के ऊपर हमला करके अब्दुल्ला और उसकी सेना को काट डाला गया और फिर उसी तरह दुश्मनों के 22 थाने छीन कर उनको मार भगाया। मेवाड़ का इतिहास लिखने वाले कहते हैं कि एक ही साल यानी संवत 1642 की लड़ाई में अजमेर, चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अलावा सारा मेवाड़ महाराणा ने दोबारा जीत लिया और राजा मान सिंह और जगन्नाथ बदला लेने के लिए जो फूले फूले फिरते थे कि हमने महाराणा को हरा दिया, आमेर के ऊपर हमला किया और उसके मालदार शहर मालपुरे को लूट कर नष्ट कर दिया। महाराणा की बाकी उम्र आराम से गुजरी, क्योंकि 12 साल तक फिर मुगलों की कोई चढ़ाई नहीं हुई। इस समय उन्होंने अपने उजड़े राज्य को दोबारा बसाया। उदयपुर को, जो दुश्मनों की चढ़ाई के कारण बसते बसते रह गया था, नए सिरे से बसाया। लड़ाइयों में साथ रहे सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें दी गईं और उनके ओहदे भी बढ़ा दिए गए। महाराणा की मृत्यु। संवत 1653 में महाराणा की मृत्यु हो गई। तारीख मालूम नहीं हुई, न टाड राजस्थान में देखी गई, न मूता नेरसी की ख्यात में है, मगर अकबर नामे में लिखा है कि तारीख बहमन सन 41 जलूसी को राणा का जमाना खत्म हो गया। उसे उसके अधर्मी बेटे अमरा ने जहर खिला दिया और एक कड़ी कमान के खींचने से भी झटका लगा था। हिसाब लगाने से यह तारीख माघ सुदी पंचमी संवत 1653 होती है। टाड राजस्थान में महाराणा के मरने का हाल इस तरह से लिखा गया है कि महाराणा की सारी उम्र लड़ाइयों में गुजरी। उनका सारा शरीर घावों से भरा हुआ था। चिंता और दुख के कारण वे जवानी में ही बूढ़े हो गए थे। उनके हाथ पैर रात दिन की दौड़ धूप से कमजोर हो गए थे। कमजोरी के कारण उनको तरह तरह की बीमारियां हो गई थीं। हालांकि उनके मरने की हालत भी उनकी बहादुरी साबित करती थी। उन्होंने अमर सिंह को कसम दिलाई कि तुम हमेशा दुश्मन से लड़ते रहना और कभी भी लड़ाई से पीछे मत हटना। अमर सिंह ने कसम खाई और वचन दिया तो भी महाराणा को तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बेटा कभी आजादी की लड़ाइयों की तकलीफों को नहीं सह सकेगा। और ऐसा समझने का कारण यह था कि महाराणा और उनके साथियों ने पिछोला झील के किनारे पर कई झोपड़े बनाए हुए थे, जिनमें वे अपने छिपने के दिन काटा करते थे और अंधेरे में सिर छिपाकर बैठ जाते थे। राजकुमार अमर सिंह को इस बात का ख्याल नहीं रहा कि झोपड़ा बहुत नीचा है और उसका एक बांस बाहर को निकला हुआ है, और जैसे ही वे निकलने लगे तो उनकी पगड़ी बांस में फंस गई, जिसके बाद वे उसको वैसे ही खींचते हुए चले गए। महाराणा ने जब अपने बेटे की यह जल्दबाजी देखी तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने समझ लिया कि वह कभी उन परेशानियों को नहीं झेल सकेगा जो दुश्मनों से लड़ने में आ जाती है। महाराणा उस वक्त एक टूटे से झोपड़े में थे और उनके सरदार जो बुरे वक्तों में आड़े आए थे सब उनके सिरहाने बैठे थे और उनके दम तोड़ने की हालत को बहुत लाचारी, बेबसी और दुख से देख रहे थे। जब बहुत देर हो गई तो सलूमर के सरदार ने ठंडी सांस भरकर पूछा कि ऐसी कौन सी परेशानी आपको तंग कर रही है जो आपकी जान नहीं निकल रही है। महाराणा ने जवाब दिया कि मुझे यह तसल्ली नहीं हो रही है कि यह राज्य मेरे बाद कहीं तुर्कों को तो नहीं दे दिया जाए। मैं उस झोपड़े वाली बात से अपने बेटे का स्वभाव जानकर यही समझ रहा हूं कि वह इनकी जगह बड़े बड़े ऊंचे मकान और महल बनवाकर उनमें आराम से बैठ जाएगा, और मेवाड़ की स्वतंत्रता जिसके लिए मैंने इतना खून बहाया है उसके हाथ से चली जाएगी। क्या तुम लोग भी उसी की तरह करोगे? सरदारों ने यह सुनकर बापा रावल के सिंहासन की कसम खाई और कहा कि हम राजकुमार की तरफ से वचन देते हैं कि जब तक मेवाड़ की आजादी अर्थात स्वतंत्रता दोबारा हासिल नहीं हो जाएगी, हम कभी भी राजकुमार को महल नहीं बनाने देंगे। इस बात के सुनने से महाराणा को पूरी तसल्ली हो गई और उनकी जान तुरंत निकल गई। ताज साहब कहते हैं कि राज्यों के मालिक को यह सोचना चाहिए कि कितनी बहादुरी और शूरता का जोश इस राजपूत बादशाह में होगा जिसने थोड़ी सी ही फौज और दौलत से इतने बड़े बादशाह का सामना किया। अरावली पहाड़ में कोई ऐसी घाटी नहीं है कि जहां महाराणा ने कोई बहादुरी का काम ना किया हो, जिसमें या तो उनकी जीत हुई या फिर ऐसी हार हुई जिससे उनकी शान और बढ़ गई हो और नाम भी हुआ हो। इन लड़ाइयों में से हल्दी घाटी और देवर की लड़ाई ज्यादा मशहूर हैं।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।